نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دار قرآن 2023 ڈی کیو 2023 ڈے 2 انشاءاللہ اس سال ہم ڈے وائز چلیں گے اور اپنے پلانر کو ساتھ لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ہر دن کا جو بھی سفر ہوگا وہ تقریباً ایک ہی جتنا ہوگا فیو سیکنڈ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں منٹ لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اپنے پلان کے ساتھ چلیں گے کل ہم نے جو بات کی آپ سب کو یاد رہی کس کو بات میں وہ باتیں یاد رہیں اور ان سب اسٹوڈنٹس اور لسنرس کو بہت شاباش جنہوں نے کل کے دن کے جیمز بنائے یقین کریں کہ پڑھانے کے بعد سب سے زیادہ میرا دل جس چیز سے کھلتا ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کے نوٹس اور ایکٹیویٹیز پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ سنتے ہیں ورنہ تو میں خود بھی اکثر سوچتی ہوں اتنی باتیں میں نے کی ہیں ان کو کیا یاد رہنا ہے لیکن جب میں وہ بولے ہوئے لفظ وہ جملے وہ جیمز کاغذ پہ اور مختلف شکلوں میں کھلے ہوئے دیکھتی ہوں نا تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے تو آپ سب کو بہت شاباش کیونکہ آپ لوگوں نے حقیقت میں لیا اور جو ساتھی ابھی بھی پوری طرح سے جذب نہیں کر پا رہے کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ جذب کریں گے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر موقع دے رہے ہیں کہ ہم اس سفر میں اپنے آپ کو مزید نکھار سکیں کل کے سبق میں پہلے پارے کا جو حصہ پڑھا اور اس کے بعد جو کل ہماری ڈے ون کی شخصیت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا انہوں نے ہمارے دلوں پہ اثر چھوڑا کیا ہم نے خود کو ان کے ساتھ جوڑ کر تقابل کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بھی انہی جیسا بننے کی کوشش کریں گے ورنہ پڑھنا پڑھانا کوئی زیادہ فائدہ نہیں دے گا ثواب تو مل ہی جائے گا اللہ چاہے گا جتنا بھی آپ کو اور مجھے دے دے لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فائدہ مل جائے تو لکھیے ثواب سے زیادہ فائدے کی خاطر ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ سفر طے کرنا ہے اور یقین کیجئے کہ ابو بکر صدیق جیسی شخصیت آپ کے میرے سامنے ہو جس پہ ہم نے اپنے آپ کو ٹکانا ہے تو پھر تو وہ اینڈ لیس کام ہے ہمارے پاس ہم جتنا زیادہ دیکھیں گے جتنا زیادہ ان چیزوں کو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبور دیا آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کافی نہیں سمجھیں گے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں محسوس کم ہوتی ہیں لیکن اس کے اثرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں تو مقام صدیقیت اڈاپٹڈ مقام میں سب سے اونچا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جو مختلف گروہ بنائے ہیں نا اس میں انبیاء اور رسل یہ سب یہ وہ بھی ہے یعنی اللہ کی عطا سے کوئی نبی بنتا ہے اللہ کی عطا سے کوئی رسول بنتا ہے نہ آپ میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں نہ کوشش یہ لکھ لیجئے جملے آج کی شروع کی جملوں میں چند چیزیں ہاں قصبی چیزوں میں سب سے اونچا مقام صدیقیت ہے انسانوں کے بیچ میں اتنا سچا ہو جائے کہ آسمانوں پہ بھی اس کی سچائی کی باتیں آنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ جو دنیا میں جیسا ہوتا ہے آسمانوں پہ بھی اس کے لیے وہی چیز آ جاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں علامہ اقبال نے فارسی میں کچھ اشعار کہے تھے جن کا ترجمہ کیا ہے کہ ان کے احسانات ہمارے آقا پر سب لوگوں سے زیادہ تھے وہ جو طور سینا یعنی نور اسلام کے پہلے کلیم تھے ان کی ہمت نے ملت کی کھیتی کے لیے ابر کا کام کیا یعنی ابو بکر ایک بادل بن کے برسے امت مسلمہ پر وہ جو اسلام غار ثور میدان بدر اور قبر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں مراد ہے کہ آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں ہے آپ کے پڑوس میں ہے کتنے دن کی قربانیاں دی صدیق نے کتنے دن رہے غار ثور میں کتنے دن مکہ والوں کی مخالفت سہی لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت عطا کر دی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مقام دے دیا وہ فار ایور ہے تو آپ کے میرے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے اور وہ کیا ہے کہ دین کے رستے کی جو مشکلات ہیں اس پہ غم نہ کھائیں پھر کیا ہو جائے گا وقت تو گزر ہی جاتا ہے اچھے کام کرنے والوں کا بھی گزر جائے گا اور برے کام کرنے والوں کا بھی گزر جائے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد انجام کیا ہے आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में कई बार ये बात बोलती हैं कि बेटा मेहनत कर लो, फिर सारी ज़िंदगी आराम ही तो करना है। तो आप और मैं भी खुद को अपने इस नफ्स के बच्चे को कभी कभी ये कहा करें कि ये दुनिया काम की जगह और वो दुनिया आराम की जगह। जो लोग इस दुनिया में मेहनतें करके जाएंगे और मुकामे सिद्दीकियत पे जाने की कोशिश करेंगे, पहुँचे जहाँ भी, वो तो अल्लाह ताला जो उनको मुकाम दे दे, तो वहाँ कब्र में या मौत के वक्त उनको कहा जाएगा कि नम का नौ मतिल उरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। यानी दुल्हन को कोई नहीं उठाता, आराम करवाते हैं। तो तुम दुनिया में काम करके आओ तो वहाँ तुम्हें आराम मिलेंगे। ये जुमले कभी भी आप थकने लगे ना तो मेरे याद रखा करें। मैंने अपने लिए भी ज़िंदगी में यही एक मेयार दिया हुआ है कि ये दुनिया काम की जगह और वो दुनिया आराम की जगह। सोने वालों की भी गुजर जाएगी और खाने वालों की भी गुजर जाएगी और खिलाने वालों की भी गुजर जाएगी। तो अल्लामा इकबाल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में जो खूबसूरत सी बातें की थी, उनमें से ये सारी चीज़ें हैं। आ अमन अन्नास बर मौलाए माँ, आ कलीम अव्वल सीनाए माँ, हिम्मते औ कश्त मिल्लत राचू अबर, सानिए इस्लाम ओ गारो बदर ओ कबर। तो ला करे कि हम भी दीन के रस्तों में ऐसे ही साथी बन जाएं कि हमारे बगैर कोई काम ही ना हो। इतनी मोहब्बत थी सिद्दीक़ अकबर को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिस मोहब्बत ने हर कुर्बानी को आसान कर दिया। लिखिए जुमला, मोहब्बत कुर्बानियों को आसान कर देती है। हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम को करते वक्त अगर हम उस काम से मोहब्बत करते हैं तो हमें एहसास ही नहीं होता। मनपसंद मेहमान आ रहा हो, कई दफ़ा छुरी के कट लग जाते हैं किचन में, फील ही नहीं होता, इसलिए कि मोहब्बत होती है ना। और अगर बोझ बन जाए तो काम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियाँ थी ना, ये मोहब्बतों के रास्ते में थी। अल्लामा इकबाल ने बांगे दरा में एक नज़म सिद्दीक़ के नाम पर बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में शान सिद्दीकी में बयान की है कि गज़वे तबूक का मौका था और अल्लाह के नबी जंग की तैयारी के लिए मुसलमानों को अतियात देने की रग़बत दिला रहे थे और हज़रत उमर फ़ारूक अपना आधा माल इस उम्मीद के साथ ले आए। अगले पारे की शख्सियत हज़रत उमर है, इसलिए इसको अभी नोट कर लीजिए। दोनों में मुकाबला किस बात का है कि हम में से नेकी कौन ज़्यादा करता है। और उमर क्या कहते हैं कि आज तो सिद्दीक़ के अकबर से आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन सिद्दीक़ से आगे कौन निकले, अपना सारा ही माल उठा लाए। अल्लामा इकबाल ने इसको बड़े खूबसूरत पेराए में बयान किया है, कहते हैं कि इतने में वो रफ़ीक के नबूवत भी आ गया, अबू बकर की तरफ इशारा, जिससे बिनाए इश्क व मोहब्बत है इस्तवार, ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त, हर चीज़ जिससे चश्मे जहाँ में हो एतबार, मिल के यमीन व दिरहम व दीनार रख्त व जिन्स, इश्क कम रस्म शुत्र व कातिर व हिमार। बोले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहिए फिक्रे एयाल भी। यानी नबी ने कहा कि अपने बच्चों के लिए भी तो कुछ रख लो। कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार, ए तुझसे दीदा महो अंजम फरोगे गीर, ए तेरी ज़ात बायसे तकवीन रोज़गार, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। ये मोहब्बत के सौदे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह आपको मुझे मोहब्बत दे दे, दीन से, नबी से, इस काम से, इस मिशन से, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए और नबी सल्लम की हिमायत और नुसरत के लिए और इस मकसद की लगन के लिए जो सोज पाला था, उसको सोज़े सिद्दीकी कहते हैं, सच्चा सोज। आज भी जिसके दिल में दीन की सच्ची मोहब्बत होगी ना, वो थकेगा ना, वो अकेगा ना, वो खपेगा ना, वो परेशान होगा। ये सोज़े दुरू मांगी है, अल्लाह मेरे अंदर दर्द पैदा कर दे। अल्लाह जैसे मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत है, मुझे दीन से वो मोहब्बत हो जाए, मुझे नबी सल्लम से वो मोहब्बत हो जाए। और फिर आगे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर दे। ये साकी नामा है बाले जिब्रील में, आप जाके खुद भी पढ़ लीजिए। यानी हज़रत अली ऐसा दिल दे, हज़रत अबू बकर जैसा सोज दे, फिर सीनों में तीर आ जाए, फिर सोज तमन्ना बन जाए। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपका पारा कंटिन्यू करूँगी इस सोच के साथ कि शायद के मेरे दिल में उतर जाए तेरी बात। अंदाज़े बयां गरचे शोख नहीं, शायद के दिल में उतर जाए बात। अल्लाह ने ऐसे लोगों को कैसे सहराओं में फूल बनाकर पेश कर दिया, इन लोगों की कोशिशों को अगर आप सामने रखें तो फिर आपको समझ आता है कि नामुमकिन मुमकिन कैसे बनता है। इस साल के दौरे कुरान के बाद मेरा गुमान है कि हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा नेकियों का, ये मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि जब हम लो स्टैंडर्ड नेकियां करते हैं और ऐसे लोगों के किस्से सुनते हैं और ऐसे ही लोगों के बीच में रहते हैं ना, तो फिर हमें अपनी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लग रही होती है। लेकिन जब हम बड़े लोगों में रहते हैं तो बात है ना कि बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। हमें भी अल्लाह ताला ऐसे लोगों की सोहबत दे दे, इनसे मोहब्बत दे दे, और जितना ज़्यादा हम इनका तذکرہ सुनते हुए, करते हुए, पढ़ते हुए अपना जायज़ा लेंगे, उतना ज़्यादा हमें इंशाअल्लाह ताला इसमें अपने अमल के लिए भी रग़बत भी मिलेगी, और इसके बग़ैर कोई चारा नहीं है। ये ज़िंदगी गुजर जाएगी, सबकी गुजर रही है, मेरी आपकी भी गुजर जाएगी, हम भी मरेंगे। कुछ लोग मरते हैं उनके ऊपर रोने वाले दो चार लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि मरते हैं तो ज़मीन भी रोती है और आसमान भी रोता है। अपनी दुआ में ये दुआ शामिल कीजिए कि अल्लाह जब मेरी मौत आए मुझ पे भी आसमान और ज़मीन रोए, मेरे लिए भी ज़मीन खजर और शजर दुआएं करें। और अल्लाह के नबी एक मौके पे एक पहाड़ के ऊपर से गुजर रहे थे, आपके साथ अबू बकर, उमर, उस्मान थे, तो ओहद पहाड़ कांपने लगा, तो आपने फरमाया कि ओहद करार पकड़, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और एक शहीद है। आज के दिन में हम इन्हीं तीनों की बातें करेंगे, नबी सल्लम, अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। इसलिए कि ये मुकाम ऐसे नहीं मिलता, ये मुकाम बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक ऐसा भी मौका था कि उकबा बिन अबी मोईत नाम का एक शख्स नबी के पास आया, आप नमाज़ पढ़ रहे थे, उसने अपनी चादर आपकी गर्दन में डाल दी। इमेजिन तो कीजिए, आपका गला इतनी सख्ती से घुटा कि आपका सांस रुकने लगा, और ये मंजर देखकर सिद्दीक से रहा न गया, और वो फौरन आए और अल्लाह के नबी और उस शख्स के बीच में आ गए और कहा, तक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, ऐ बदबख्त इंसान, तो उस शख्स को तकलीफ़ देता है, उसको कत्ल करना चाहता है जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह, और तुम्हारे पास वो रोशन दलीलें भी लेकर आया। बुखारी की रिवायत है ये 3678। और अबू बकर की शान तो पूरी होती नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में कह दिया था कि मेरे इमामत के मसल्ले पे अबू बकर को खड़ा कर दो। चंद दिन की कुर्बानियाँ होती हैं और उसका फल फिर आपकी नस्लें भी खाएंगी। जो लोग दीन के लिए घुल गए, जो दीन के लिए कोशिशें कर गए, अल्लाह ने उनको ज़ाया नहीं किया, अल्लाह की सुन्नत ही नहीं है ज़ाया करने की। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में कह दिया था कि अबू बकर को बुलाओ कि आओ लोगों की इमामत करो। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते वक्त, सुनते वक्त हमें तो रश्क आ रहा है ना उन पर, तो रश्क से ज़्यादा कोशिश, शौक, रग़बत, क्योंकि सहाबा किराम की कुर्बानियाँ तारीख़ इस्लाम के माथे का झूमर थी। कुर्बानियों की ज़मीन पे जो पौधे लगते हैं उन पे ज़रूर बहार आती है। वो फसल बाद में उगे या वक्त पे उग जाए, आपके सामने हो या आपके बाद हो, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये नहीं चाहते कि हमारे सामने हमारा बहुत ज़िक्र हो और हमारे बाद जो है वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इसके लिए जितना ज़्यादा आज कोशिश करेंगे, जितनी फ़िक्र करेंगे, उतना अल्लाह ताला आसान करेगा। हम बीच बीच में और बातें करते रहेंगे इन्हीं शख्सियात के बारे में। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना आज का गोल। पिछला पारा हमने किस आयत पर रोका, बोलिए। 11 रुकू पढ़े थे, आज रुकू नंबर 12 से शुरू करेंगे, आयत नंबर 97 से 103 तक ये रुकू है। चले शुरू करते हैं और आप मेरे साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। टॉपिक है ईमान और तकवा की रविश इख्तियार करना। इसमें हम देखेंगे कि कैसे पिछली कौमों को भी अल्लाह ताला ने इसी बात का हुक्म दिया था और आज हमें भी इसी बात का हुक्म दिया जा रहा है, ईमान और तकवा की रविश इख्तियार करना। क्योंकि इसके बगैर कोई गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी में पेट्रोल ना डाले ना तो गाड़ी नहीं चलती। इसी तरह ईमान और तकवा जिसके पास नहीं है वो ज़्यादा देर तक फ़स्तबिकुल खैरात कर नहीं सकता, ज़्यादा दिन तक वो नेकियों के इस सफ़र में अपने आप को जमा नहीं सकता, खड़ा नहीं कर सकता। इसके लिए आपको मुझे जिस चीज़ की कोशिश करनी है वो क्या है कि अल्लाह हमें वो काम करने की तौफीक दे जिसकी वजह से हमारी नेकियां बढ़ने लगें, और हमें उन कामों के करने के लिए चुन लें कि जिनका असर रहती दुनिया तक बाकी रहे। याद रखिए कि बनी इसराइल जिनकी हम कहानियां पढ़ रहे हैं, ये अपने वक्त के चुने हुए लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा नेमतें भी दी थी, लेकिन ये खाने पीने में लग गए, इनको अपना मकसद हयात भूल गया, और ये दुनिया के अंदर सिर्फ अपने खाने पीनों को मकसद हयात बनाते हुए इस दुनिया से गुजर गए। और जब चले गए तो अब तो कब्रों में होंगे, अब तो उनकी हड्डियां भी गल सड़ चुकी होंगी, लेकिन वो लोग जो ऐसी जिंदगियां बसर कर जाते हैं, फिर वो चीज़ें बाद में उनके काम नहीं आती। तो आइए देखते हैं। फरमाया, ए नबी, आप कह दीजिए कि जो जिब्राइल का दुश्मन हो, जिसने आपके दिल पर पैगाम बारी ताला उतारा है, जो पैगाम इनके पास की किताब की तस्दीक करने वाला और मोमिनों को हिदायत और खुशखबरी देने वाला है, तो अल्लाह ताला भी इसका दुश्मन है। जो शख्स अल्लाह का और इसके फरिश्तों का और इसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाईल का दुश्मन हो, ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह है। और यकीनन हमने आपकी तरफ रोशन दलीलें भेजी हैं, जिनका इनकार सिवाय बदकारों के कोई नहीं करता। ये लोग जब कभी कोई अहद करते हैं, तो इनकी एक न एक जमात इसे तोड़ देती है, बल्कि इनमें से अक्सर ईमान से खाली हैं। जब कभी इनके पास अल्लाह का कोई रसूल इनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया, यानी इनके पास कोई ऐसा आया जो अल्लाह की किताब की तस्दीक करता था, मुराद ये है कि वो किताब उनको पेश करता था, तो इन अहले किताब के एक फ़िरके ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया कि वो जानते ही न थे, और इस चीज़ के पीछे लग गए जिसे शयातीन हज़रत सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना तो कुफर किया, बल्कि वो कुफर शैतानों का था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे, और बाबुल में हारूत मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया था, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक़्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें कि हम तो एक आजमाइश हैं, तुम कुफर ना करो। फिर लोग इनसे वो सीखते जिससे खामंद और बीवी में जुदाई डाल दें, और दरअसल वो बग़ैर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए और नफ़ा ना पहुंचाए, और वो बिल यकीन जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वो बदतरीन चीज़ जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं, काश के वो जानते होते। अगर ये लोग साहिब ईमान मुत्तकी बन जाते, तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब इन्हें मिलता, अगर ये जानते होते। तो ये था रुकू 97 से 103 तक। इसमें हमारे लिए जो बहुत ही तवज्जो वाली चीज़ थी, वो जादू थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, बाकी अम्बिया से ज़रा सा मुख्तलिफ कह लीजिए। अल्लाह ने इनको मुख्तलिफ किस्म के मोजज़ात अता किए थे, जिसमें कुछ अनयूजल चीज़ें थी, यानी हवाओं में उड़ना और इसी तरह से परिंदों का बातें करना। कुछ जिन्नात मुसख़्खर थे जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में इनके माविन और मददगार होते थे। शयातीन ने ये बात लोगों में मशहूर कर दी कि ये नबी नहीं बल्कि नऊज़ुबिल्लाह जादूगर हैं, और ये बात नस्ल दर नस्ल, यानी रिवायतन, सीना दर सीना बनी इसराइल के बच्चों से बच्चों के बच्चों को पहुंचती हुई नीचे तक आ चुकी थी। इल्ज़ाम था एक नबी पे। अब ज़रा नोट कीजिए, हज़रत सुलेमान का दौर नबी सल्लम के दौर से कितने बाद का दौर था, लेकिन अल्लाह ताला कभी भी अपने किसी सच्चे बंदे पे लगा हुआ इल्ज़ाम ऐसे नहीं छोड़ता, चाहे उसकी ज़िंदगी में चाहे उसके बाद। और यही हुआ। ये आयात नाजिल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सदाकत बयान की कि वो जादूगर नहीं थे। वो तो जादू तो एक उस दौर का मशगला बन चुका था, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा यानी जादू टोने में रखते थे। तो ये सारी आयात जादू से मुतल्लिक हैं। आपके मेरे लिए जादू से मुतल्लिक क्या है कि जादू का इल्म सीखना सिखाना, इस सोच के साथ भी कि जी किसी ने हम पे जादू कर दिया है, हम तो तोड़ करने लगे, इस्लाम में इसकी कतन इजाज़त नहीं है। अगर आप देखें तो अल्लाह की रज़ा पाने वाले लोग कौन होते हैं, जो जादू टूने में बिल्कुल नहीं रहते। आप अगर इस पूरे मामले को समझते हुए अपने लिए ये चीज़ें में रख दें कि जादू से इस्लाम का कोई दखल नहीं है, तो है जादू हकीकत है कि नहीं, होगी, हमें क्या लगे, हमने इसको क्या करना है। और जादू की तरफ जितना जाएंगे उतना दिल दिमाग आपका बंद होगा। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लम ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें बता दी कि अगर पहले से वो पेशबंदी कर लें, प्रिकॉशंस ले लें, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। मसलन, बावजू रहना, अकीदे का पुख्ता रहना, अल्लाह पे तवक्कुल बहुत हो, और ऐसी झाड़ छूंग फूंक में नहीं पड़ना कि जिसके बाद इंसान कई और गलत चीज़ों में निकल पड़े। फिर इसी तरह तहारत का एहतमाम, सुबह शाम की दुआएं, 5 वक्त की नमाजें, पेट में रिज़्क़ हलाल का होना, नज़रों का पाक रखना। नाखून लंबे होंगे तो अंदर शयातीन जाएंगे, लंबे बाल खोल के बाहर फिरेंगे तो शयातीन अंदर जाएंगे। हुसन का इजहार करना मग़रिब और ईशा के बिटवीन, यानी बिल्कुल मग़रिब का जो स्टार्टिंग टाइम होता है उस वक़्त ऐसी चीज़ों को एक्सपोज कर देना, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो आपको मुझे क्या चाहिए जादू से बचने के लिए? मुकम्मल ईमान। जहाँ ईमान होगा वहाँ जादू नहीं आएगा। दूसरी चीज़ तकवा। बचिए, आपका रब है ना, आपने क्यों जादू टोने को पकड़ना है? और अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में भी ये काम शुरू हो जाएगा। तीसरी बात है सच्चा इल्म लीजिए। खालिस इल्म आपको ऐसी तमाम चीज़ों से बचा लेगा और फिर अल्लाह की रज़ा वाले काम करेंगे इंशाल्लाह। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों में आगे आते जाएंगे अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको ऐसे असरात से बचा देगा। और इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता किसी को जादू हो गया तो उसका भी इलाज मौजूद है। हमारे पास एक सीरीज़ है दम ज़रिया इलाज, अब्दुल्ला बिन बास अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी लिखी हुई एक किताब पाइल्ड अप है। बेसिकली हदीस से वो दुआएं और औरात हैं जिसमें शरई तौर पे जादू टोने का इलाज है। आप वो बुक पढ़ लीजिए। लेकिन मुख्तसरन ये है कि आप बग़ैर किसी और चीज़ में गए हुए नबी सल्लम के जादू का जो इलाज हुआ था वो मुअव्वज़ा तईन कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक से हुआ था। 11 नोट थी, एक एक गिरा एक एक आयत पे खुलती गई। पूरे यकीन और ईमान से पढ़िए। और अगर किसी को इससे ज़्यादा चाहिए इन्फॉर्मेशन तो इस पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जादू का एक सेमिनार भी हुआ था 2 रोज़ में, लंदन में किया था, उसकी भी ऑडियोज़ आप कहीं से ले सकते हैं। और बहुत कुछ है और इन्हीं आयतों की आप डिटेल तफसीर सुन लीजिए तो वहाँ भी मिलेगी। आगे चलते हैं, रुकू नंबर 13 है, आयत 104 से 112। टॉपिक है अपनी हस्ती को अल्लाह के सपुर्द कर दो, यानी सबमिट टू योर अल्लाह सुबहाना ताला, उसके पास अपने आप को करेंगे, जितना अल्लाह ताला के आगे झुकेंगे उतना अल्लाह आपको झुकाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़ूलू राईना, ए ईमान लाने वालो तुम नबी सल्लम को राईना ना कहा करो बल्कि उनज़ुर ना कहो, यानी हमारी तरफ देखिए और सुनते रहा करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ना तो अहले किताब के कुफार और ना मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो, इनके इस हसद से क्या हुआ। अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत खसूसियत से अता फरमाए और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। जिस आयत को मनसूख कर दें या भुला दें इससे बेहतर या इस जैसी और लाते हैं, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है? क्या तुझे इल्म नहीं कि ज़मीन और आसमान का मुल्क अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं? क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था? सुनो, ईमान को कुफर से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। इन अहले किताब के अक्सर लोग बावजूद हक वाजे हो जाने के महज हसद और बुग्स की बिना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं। तुम भी माफ़ करो और छोड़ो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म लाए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तुम नमाज़ें कायम रखो और ज़कात देते रहा करो और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे, इसको नोट करिए, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, जो कुछ भलाई जो अच्छा काम जो सदका जारिया का काम तुम अपनी ज़िंदगी में शुरू कर जाओगे सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे। जैसे एयरपोर्ट पर एक तरफ अपना सामान देते हो तो अगली तरफ जाते हो तो तुम्हें बेल्ट पे अपने लगेज मिल जाते हैं। हर वो नेकी जो लिल्लाहियत की है साथ अल्लाह के लिए की जाएगी कल आखरत की बेल्ट पे तुमको मिलेगी, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। पूरी कन्विक्शन के साथ नेकी किया करें, सिर्फ अल्लाह को दिखाने और अल्लाह को बताने के लिए किया करें। फिर फरमाइए, कहते हैं कि जन्नत में यहूद और नसारा के सिवा और कोई ना जाएगा, ये सिर्फ इनकी आरजुएँ हैं, यानी फॉल्स होप्स, जस्ट लाइक झूठी आरजुएँ तमन्नाएँ वहमी बातें ख्याली पुलाव हैं शेख चिली के ख्वाब हैं ये। इनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो। सुनो, जो भी अपने आप को खलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे सिद्दीक़ अकबर की तरह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, पूरे का पूरा सबमिट कर दे, सरेंडर, हैंड्स डाउन, सर नीचे आंखें नीचे सजदे में गिर जाओ, बोनलेस मीट की तरह अपने आप को बिल्कुल अल्लाह के इशारों पे डाल दो तो क्या होगा? बेशक इसे इसका रब पूरा बदला देगा, इस पर ना तो कोई खौफ होगा ना गम और ना उदासी। क्या खूबसूरत आयतें, जीने का खूबसूरत अंदाज़ है। सहाबा को ये आयतें समझ आ जाती थी, हम तो इन आयतों को पढ़कर गुजर जाते ना, सहाबा नहीं गुजरते थे, वो हर हुक्म पे अमल करने के लिए पहले से तैयार थे। सहाबा कुरान क्यों पढ़ते थे आपको पता? ताकि उनको इस पर अमल करने का मौका मिल जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि कुरान पढ़ने के साथ साथ हम अल्लाह ताला की रज़ा के काम भी कर रहे हैं कि नहीं। हम में से कुछ लोग कुरान इस तरह से पढ़ते हैं कि बस एक कुरान है, एक बोझ है जो सर से उतारना है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी सारी खुशफहमियों का इलाज कर दो। होता क्या है कि जब भी कभी अल्लाह ताला की कोई बात लोगों के कानों में पड़ती है ना, तो लोग उसको किसी न किसी एंगल से सोचते हैं। अच्छा, अगर मैंने ये काम किया तो ये होगा, मैंने वो किया तो वो होगा। अल्लाह कहते नहीं, टेंशन फ्री ज़िंदगी चाहते हो, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, किस चीज़ का बदला है? अल्लाह के आगे झुक जाओ, क्योंकि जितना अल्लाह के आगे बंदा झुकता जाता है, उतना अल्लाह ताला उसके लिए उन चीज़ों को आसान कर देता है। तो देखिए, रुकू शुरू हुआ था ला तकुलु राईना, इसके ऊपर सहाबे कराम के एक अमल का जिक्र है। हदीस में आता है, हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अरब अपने कलाम में लफ्ज़ राईना बोलते थे। राईना पता क्या है? जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, मैं बहुत तेज़ी से बोल जाऊँ तो आप हमें देखेंगे एक्सक्यूज़ मी, ज़रा दोहरा दीजिए प्लीज़, ज़रा आहिस्ता बोलिए, ये मुराद था। जब यहूद ने ये सुना तो वो भी नबी सल्लम से यही लफ्ज़ कहने लगे, और इन्हें ये अच्छा लगता क्योंकि राइना यहूद के कलाम में एक तौहीन आमेज़ लफ्ज़ था। वो कहते कि पहले हम मोहम्मद को छुप कर गाली देते थे, नाउज़ुबिल्ला, पीछे से बुरा कहते थे, साम अलैकुम, तुम पे मौत आए, साम मौत को कहते हैं। अब तो उनको खुला मौका मिल गया, अब तो एलानिया गाली देंगे क्योंकि इन्हीं का कलाम है। इसलिए फिर अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं मोहम्मद राइना, और इस पर बनते भी बहुत नेक थे। क्या करते थे? अंसार में एक सहाबी थे, साद बिन उबादा उनका नाम था, यहूद की सादत को जानते थे, वो उनका मकर समझ गए। कहने लगे, अल्लाह के दुश्मनों, तुम पर अल्लाह की लानत, इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम में से किसी से ये कलमा अगर मैंने सुन लिया, उसकी गर्दन मार दूंगा। ये देखिए सहाबा का ईमान, नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कहाँ कोई नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाए, कोई नबी के तौर तरीकों का मजाक उड़ाए। और उन्होंने कहा, क्या तुम खुद ये नहीं बोलते कि रायना, यानी यहूद कहने लगे, तुम खुद भी तो रायना कहते हो। तो उस पे अल्लाह ने कहा था, ईमान वालों, तुम ये रायना कहना छोड़ दो, थोड़ा सा दबा देते थे, राई ना, राई कहते चरवाहे को, शेफर्ड, बकरियां चलाने वाला, यानी जरा सा अहमक और कमजोर और सीधा साधा सा इंसान तसव्वुर में आता है। तो इससे अल्लाह ने हमें क्या बताया? पहली बात है कि गैर कौमों का शुआर जो हो उसको तुम छोड़ दो। मन तशब्बह भी कौम में फहुव मिन्हु, जो किसी कौम की तशबीह करेगा, इख्तियार उसी में से उठाया जाएगा। फिर इससे हमें पता चलता है कि अहले ईमान को दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से बचना चाहिए। और साद बिन उबादा की नबी सल्लम से मोहब्बत देखिए कि अल्लाह ने उनकी इस खूबी को ही सामने रख दिया। फिर इस तरह कलाम में मुश्तबे अल्फाज से बचना चाहिए, इससे हम सबको भी बचना चाहिए। आज बहुत सारे लफ्ज़ हम उन्हीं के देखा देखी बोलने शुरू होते हैं, गलत लफ्ज़ हैं बोलने में, मैं बताऊंगी तो बुरा लगेगा, लेकिन हम खुद नोट करिएगा, अक्सर स्लैंग लैंग्वेज वाले कई ऐसे अजीबो गरीब लफ्ज़ बोलते हैं, सिर्फ इन हो गए, किसी हीरो ने बोल दिए, किसी अदाकार ने कह दिया, किसी गुलकार ने या किसी और ने कह दिया, वही चीज़ आम होती है। तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए। फिर दूसरी बात जो इस रुकू से पता चलती है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। फिर नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की बात है, वो लोग जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं उनको नमाज कायम करनी पड़ेगी, अफ़ो दरगुज़र से काम लेना पड़ेगा। आखरत के लिए नेकियां जमा कीजिए, वमा तुक़द्दिमु लिअन्फुसिकुम, कितनी छोटी सी ज़िंदगी है हमारी, एक एक दिन कीमती है, इसको आखरत के लिए नेकियां जमा करने में इस्तेमाल कीजिए। और एहसान की रविश इख्तियार करना है, ये सब काम है अल्लाह की रज़ा को पाने वाले। आगे है जी रुकू नंबर 14, आयत 113 से 121, किताब पढ़ने का हक अदा करना है, और अल्लाह हमें इस हक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वकालतिल यहूद, यहूद के कुछ कहने की बातें, यहूद कहते हैं कि नसरानी हक पर नहीं, और नसरानी कहते हैं कि यहूद हक पर नहीं, हालांकि ये सब लोग तौरात पढ़ते हैं। इसी तरह इन जैसी बात बेइल्म लोग भी कहते हैं। क़यामत के दिन इनके इस इख्तलाफ का फैसला इनके दरमियान अल्लाह करेगा। इस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र किए जाने को रोके और इनकी बर्बादी की कोशिश करे? ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए ही इसमें जाना चाहिए। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखरत में भी बड़ा अजाब है, और मशरिक़ और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है। तुम जिधर भी मुँह करोगे उधर ही अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह ताला कुशादगी और वुसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, नौज़ुबिल्लाह, नहीं बल्कि वो पाक है। ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक इसकी मलकियत में है और हर एक इसका फरमा बरदार है। वो ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला है। वो जिस काम को चाहे कह देता है कि हो जा, कुन फयकून, बस वो काम वहीं हो जाता है। इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी ये कहा था कि खुद अल्लाह ताला हमसे बातें क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह ऐसी ही बातें इनके अगलों ने भी कही थी। इनके और उनके दिल यकसां हो गए। हमने तो यकीन लाने वालों के लिए निशानियां बयान कर दी। हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और जहन्नमियों के बारे में आपसे बात बुरस नहीं होगी। आपसे यहूद और नसारा हरगिज राजी ना होंगे जब तक कि आप इनके मजहब के ताबे ना बन जाएं। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा और ना मददगार। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्हें हमने किताब दी वो इसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं, वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ कुफर करे वो नुकसान वाला है। क्या पता चला, किताब को हक देना होगा। अब देखिए कि इस पूरे हिस्से में हमने एक आयत पढ़ी, फाई नमा तुवल्लुफसम वजहुल्ला, तुम जिधर भी रुख करोगे तुम्हें अल्लाह का रुख वहाँ मिलेगा। इस पे भी सहाबा कराम का एक वाक़ा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने एक लश्कर कहीं भेजा। कहते मैं भी उसी में था, हमें तारिकी ने घेर लिया, इन रात हो गई, यहाँ तक कि हम किबला भी नहीं पहचानते थे। तो हम में से एक गिरोह ने कहा कि किबला शिमाल की तरफ है, उसकी तरफ नमाज पढ़ी और ख़त खींच दिए। और हम में से बाज ने कहा नहीं, किबला तो जनूब की तरफ है, उन्होंने भी उसी तरफ ख़त खींच दिए। यानी जिधर नमाज पढ़ी ना तो निशानी रख ली कि हमने इधर पढ़ी थी, तो उधर एक ख़त खींच दिया, दूसरों ने दूसरी तरफ रख दी। जब सुबह हुई तो सूरज तुलू हुआ और सारे ख़त भी दिखे। अब वो खतूत जो किबले के अलावा सिमत में थे कोई इधर थे, सब पता लगने लग गया। कहते जब हम सफ़र से वापस लौटे तो हमने आकर नबी सल्लम से ये बात डिस्कस की कि हम में से तो हर एक ने पता नहीं किधर किधर मुंह करके नमाज अदा कर ली। तो उस पर अल्लाह के नबी खामोश रहे, और उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई थी, वलिल्लाहि अल-मशरिकु वल-मग़रिबु फ़ैनमा तुवल्लू फ़थम्मा वज्हुल्लाह इन्नल्लाहा वासिउन अलीम। इससे आपको मुझे क्या पता चलता है, पूरी कोशिश कीजिए किबला ढूंढने की, फिर भी अगर नमाज गलत रुख पे हो गई तो कोई बात नहीं, नमाज पढ़ ली, वक्त गुजर गया, अगली नमाज का वक्त आ गया, अब दोहराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने आकर बता दिया किबला उधर था, तो नमाज में रुख बदल लीजिए। नमाज पढ़ ली, किसी ने आके बता दिया कि गलत तरफ पढ़ी थी, तो आपका दिल करे तो आप दोहरा लीजिए, दैट्स इट। हाँ, वक्त गुजर गया तो फिर अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला उसी को कबूल करेगा। असल बात तवज्जो है। दूसरी बात एक ही, इसमें हक का तिलावती पुराने पाक के हकूक, हम अक्सर इस पर बात करते हैं। इस आयत की शान नज़ूल में भी सहाबा कराम का एक वाक़िया आता है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़ तिलावा। क्या इब्न अब्बास कहते कि यह आयत उस कश्ती वालों के बारे में नाजिल हुई जो जाफ़िर बिन अबी तालिब के साथ सरजमीन हबशा से आए। ये 40 लोग थे जो हबशा और शाम से ताल्लुक़ रखते थे। आपने सुना होगा ना कि हजरत हबशा के बाद सहाबा कराम वापस जब आ गए थे तो वहाँ से फिर कुछ लोग आए थे जो दीन सीखने आए थे, तो अल्लाह ताला ने ये मशरिक और मगरिब और शिमाल और जनूब के झगड़े ख़त्म कर दिए। असल बात पता क्या है कि किबला इज्तमाईत की अलामत है। अभी हम सब नमाज पढ़ेंगे तो सब एक रुखे हो जाए, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म क्या है, ड्रेस कोड क्या होता है? आप जहाँ भी कुछ लोगों को एक जैसे हाल उलिये में देखें तो अच्छा लगता है ना, एहराम बांधते हैं सब, सफ़ेद बांधते हैं। किबला किबला इतना ही है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है परे सरहद इदराक से अपना मस्जूद, किबले को अहले नज़र किबला नुमा कहते हैं। यानी ये किबला जिसकी तरफ हम मुँह करते हैं ना, ये बस एक डायरेक्शन है, क्योंकि अल्लाह ने इस तरफ मुँह करने को हुक्म दिया। आप देखिए, जब आदम अलैहिस्सलाम को खड़ा करके फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, तो उस वक्त किबला क्या था? आदम, क्यों? अल्लाह का हुक्म था। बैतुल्लाह की तरफ करो, अल्लाह का हुक्म। बैतुल मक़दस की तरफ करो, अल्लाह का हुक्म। तो असल किबला मुसलमान का क्या है? अल्लाह का हुक्म। कितने अफसोस की बात है, नमाज में तो पुरकार लेकर, कंपस लेकर, फुट ले लेकर किबले नापते हो, 19-20 होने पे फतवे जारी कर देते हो। आगे इंशाल्लाह दूसरे पारे के शुरू में पढ़ने वाले हैं। लेकिन तुम्हारी नमाजों के किबले तो बड़े टाइट हैं। शादियों का किबला किधर है? दिल्ली की तरफ। तुम्हारी मईशत का किबला न्यूयॉर्क की तरफ है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी तो दूसरों के तरीक़ों पे गुजारनी है और नमाज के मौके पे झगड़े बहसे कर करा के उम्मत को तोड़ देते हो। तो इसे क्या पता चला कैसी बेकार बहसों में पढ़कर दीन की रूह नहीं छोड़नी चाहिए। फिर तीसरी चीज़ इस हिस्से में जब हमने पढ़ी आयत 121 में, अल्लज़ीना आतैना हुमुल किताब, ये कौन लोग थे जिनको किताब मिली? ऑफ कोर्स अहले किताब, सहाबे कराम, सालेहीन और मुहकमात पर अमल करने वाले लोगों की बात है। याद रखिए कि कुरान में दो तरह की आयतें हैं, एक वो जिनका आपकी मेरी डे टू डे लाइफ से ताल्लुक है, सीधे सीधे हुक्म, अकीम उसला, आतु ज़का, वरकौ, मराकिन, ये है सीधे हुक्म, कहते हैं हमें इसी पर गौर करना चाहिए। कुछ बातें दूसरे जहान की हैं, अल्लाह की हस्ती के बारे में, जन्नत और जहन्नम। अभी हमें उसके वास्ता नहीं पड़ा तो उस पर क्या कहना है? हम ईमान ले आए। ये मुहकमात और मुतशाबहात का फ़र्क है। अल्लाह जिन लोगों से राज़ी होते हैं ना, वो मुतशाबहात के पीछे नहीं पड़ते। आगे हम सूरह आल इमरान में भी इस बारे में पढ़ेंगे। और गलत फहमियों की वजाहत और एतराज़ात का जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं कि किताब को बहसों की बजाय अमल के लिए पढ़ो। किताबुल्ला पढ़ने का हक अदा करना पड़ेगा, इस पर सच्चे दिल से ईमान लाना पड़ेगा। कुरान के 5 हकूक़ हैं, हमारे अपने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ लिखा होता है वेबसाइट पे भी, अगर आप नूरुल कुरान खोल कर देखेंगे ना तो 5 चीज़ें, ईमान लाना, इसको सही अदा करना, इसको समझना, फिर जो समझ आ जाए उस पर अमल करना, और जो अमल आ जाए उसको आगे पहुंचाना। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।